कलर परसो। कृष्ण के लीलाओं के विविध दृष्टिकोणों का वर्णन किया साधक की दृष्टि से, अत्यंत बहिर्मुख साधक, अनर्थग्रस्त साधक, रगानुगा और रगात्मिका का भाव, और उसको हमने दिखलाया जो उतना जैसे बहिर्मुख व्यक्ति को भगवान किस तरह से उनको पवित्र करते हैं, उनके सारे अनर्थों को, उनके क्लेशों को, उनके अपराधों को, उनके पुण्य को भी समाप्त कर किस रूप से किसी किसी को चार प्रकार की मुक्तियां और किसी किसी को विशेष ऐश्वर्यमयी भक्ति और किसी किसी को प्रेमयी भक्ति में भी थोड़ा सा स्पर्श करा देते हैं, ये दिखलाए। किंतु साधकों में आवेश होना चाहिए, जैसे पुतना का आवेश, अघासुर का आवेश, शिशुपाल का आवेश, जरासंध का आवेश, ऐसे आवेश होना चाहिए। कमानुगा भक्ति में भी वैसे आवेश हो, तब तो ये चीजें होगी। दूसरी बात, हमने रागानुगा का ये दिखलाया कि कैसे उसको ग्रहण करते हैं, उस लीला कृष्ण को कैसे दर्शन करते हैं। उनका लक्ष्य पूतना पर नहीं रह करके, उनका लक्ष्य क्या होता है, यशोदा मैया के भावों को रागानुगा लेते हैं। विधि मार्ग वाले लोग अधिकांश पूतना इत्यादि के भावों को देख करके अपने दोषों को दूर करने के लिए वो बस वैधि भक्ति के द्वारा चेष्टा करते हैं, वो यशोदा मैया के भावों के प्रति प्रभावित नहीं होते। उन्हीं लोगों के लिए ये कहा गया, ओहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाये अप असाध्वि लेभे गतिं धातृचितांग ततो अन्नं कं वा दयालु शरणं। अरे पुतना जैसी राक्षसी को, जो कि स्तनपान के द्वारा समस्त शिशुओं को हत्या करने वाली, और उसको भी मारने के लिए गई कृष्ण को, और कृष्ण ने उनका स्तनपान करके उसको धातु उचित गति दी। अब यहां पर जो वैदिक भक्ति वाले साधक हैं उसको ये देखेंगे, अरे पुतना जैसी राक्षसी को मार करके उसको पवित्र बना करके धातु उचित गति दिया, तो हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे समस्त अनर्थ अपराध दूर हो जाएंगे और आत्यंतिक दुख निवृत्ति होकर के हमको भक्ति मिल सकती है, बस इतना ही देखेंगे। रागानुगा भक्त ये नहीं देखेंगे, उसके तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं जाएगी। उनकी दृष्टि किधर जाएगी, यशोदा में, यशोदा मैया की स्थिति क्या हुई। असुरों के आने से यशोदा मैया कृष्ण को देख करके उस समय उनकी क्या स्थिति हो, जैसे कि पूतना आई अघासुर बकासुर के साथ में, एक तो ये है ना, जब उस समय उनकी क्या स्थिति होती है, सेंसलेस हो जाती है और तरह तरह के विकार उनमें आ जाते हैं। किंतु जिसमें में ये असुर लोग नहीं आते हैं, उन दामोदर लीला में या फल विक्रयणी की या शंकर जी जब आते हैं ब्रज में, तब उनकी क्या दशा होती है। ये उतना के समय में जब यशोदा जी की ऐसी स्थिति है, और दामबंधन लीला में कृष्ण के प्रति उनकी भावना क्या होती है, ये सबको दिखलाया गया बिना असुरों के। ये नैमित्तिक लीलाएं हैं असुर मारण इत्यादि में, इनमें यशोदा जी का भाव एक तरह का होता है, किंतु दामोदर बंधन इत्यादि जो लीलाएं हैं, जो प्रेम का एकदम प्रवाह उच्छ्वास प्रवाह प्रवाह है, उनमें उनका भाव कैसा होता है। इसलिए कृष्ण को जब बंधन करती हैं, पसीने से तरबर हो जाती हैं, केवल मात्र अपना पुत्र मानती हैं, और उस समय के इन भावों को देख करके सुखदेव गोस्वामी जी से रहा नहीं जाता, और वो तब क्या कहते हैं, नंदस्तु अक्रूत ब्रह्मन सेव एव महोदयम महाभागा जस्यास्तरम, ये कहा ने? जब उसको पुतना को मारा, उस समय में जसोदा जी का भाग्य नंद जी का भाग्य नहीं वर्णन किया, क्यों? उनके लिए वो गौण चीज है, बहुत गौण चीज, ये निमित्त लीला का वो भाव है। किसी को कष्ट दूर कर देना, किसी को शासन कर देना, ये कृष्ण की ऐश्वर्यमय लीला है, इससे उनका वो संबंध, इससे वो प्रभावित नहीं होते सुखदेव गोस्वामी। वो कब? अरे वो जो सर्वेश्वर होते हुए भी यशोदा जी अपने प्रेम में पककर और ऐसे पर ब्रह्म को भी तारण और भर्षण करती हैं, शासन करती हैं, और कृष्ण भी रोने लगते हैं, सचमुच में रोने लगते हैं, ये यशोदा का प्रभाव। और कृष्ण उनका स्तनपान करने आते हैं और वो मना करती हैं, नहीं तुम बंदर बंधु चंचल और न जाने क्या चोर इत्यादि कहती हैं उनको। उसमें इनका यह प्रेम देखने को मिलता है, उस समय में उनके स्थायी भाव वात्सल्य के ऊपर में विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी भाव बहुत ऊंची स्थिति तक, सख से भी बहुत उन्नत किस अवस्था में दिखते हैं, धुमायित ज्वलित दीप्त उदीप्त एवं दीप्त तक आ जाएगा, सुदीप्त गोपियों में होगा, यहां तक आ जाता है, आंख से आंसू आने लगते हैं झरझर, शरीर कांपने लग जाते हैं। कृष्ण को पेड़ में से, जबकि दोनों पेड़ गिर गए और उस समय कृष्ण थोड़े से के लिए बच गए, और नंद बाबा उनको पुचकार रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, यशोदा मैया जी काठ हो गई, लकड़ी निर्जीव जैसे हो गई, स्तंभ, ये सखाओं में इतना नहीं होगा, उनमें ऐसा धन नहीं होगा, आंसू भी सूख गए, आंसू गिरना एक विकार है अष्टभाव में से, क्या है, अशु पुलक कंप रोमांच, तो इसमें भी दीप्त तक चला गया, जो सखाओं तक में भी नहीं होता है। इसलिए यशोदा जी का ये रागानुगा भक्त लोग वो लक्ष्य करते हैं, इससे भी अधिक कब लक्ष्य करते हैं, कृष्ण वनगमन करते हैं और गोपियां उनको उनका वो विरह वर्णन करती हैं, वर्णन्ति अभिरे भिरे कुसमित बनराज सुष्मि भृंग विचकल घुष्ट सरग सहिन महिध्रम मदपत अवगास यचार्यन गा सह पशुपाल बलश्चुकुजवेणु, उस समय का वर्णन वो गोपियां करती हैं। अक्षणतां फलमिदं न परम विदाम, आंखों की परम सार्थकता, जय कृष्ण जब सखाओं के साथ में गाय को चराते चराते एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं, और उस समय उनके अधर पर मुरली भी विराजित रहती है, बलदेव जी उनके आगे आगे चल रहे हैं, सखा लोग उनको जय ध्वनि करते हुए उनके साथ में चल रहे हैं, और वो कृष्ण अपने आंखों से श्रीमती राधिका जी के तरफ में देख रहे हैं, और गोपियां अपने आंखों से उनके अर्चन कर रही हैं, नैनोत्पलार्चित तनुम गो गोप संघावृतम गोविंदम कलबेणुवादन परम दिव्यांगम भूषा भजे। उस समय में ये कौन देख रहा है, गोपियां देख रही, कैसी इनकी स्थिति हो रही है। यशोदा जी की दीप्त थी और इनकी कैसी होती है अष्ट सात्विक सुदीप्त, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इस तरह से और भी आगे, इससे आगे गोपियों का वर्णन करती हैं गोपियां, वो हिरणों को भी बराहपीड़म के बाद में ये है धन्याश मूढ़ मतो, और अंत में अपने भावों को छिपाने की कोशिश करते हुए जब नहीं छिपता है, नद्योस्तदा उपधार्य मुकुंद गीत, नदियों का भाव वर्णन करने लगती हैं कि ये नदियां, नदियों में भी काम की उद्दीपना होती है। कृष्ण गोचारण करते हैं, उनके तट पर खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं, ये कौन देख रहा है, जो यशोदा मैया नहीं देखेंगे और लोग नहीं देखेंगे, सखा लोग नहीं देखेंगे, ये कौन कौन देखेगा, केवल उस रस की उपासिका जो मधुर रस की, वो देखेंगी गोपियां, वो देख रही हैं। कृष्ण नहीं है वहां, भाव नेत्र से वहां देख रही हैं, और देख रही हैं क्या, जिन ये जमुना जी कृष्ण को देख करके अत्यंत भाव विधोर हो गई, कमल का उपहार लेकर के और उनका आलिंगन करने के लिए बस तक्षल तक आई। कृष्ण निर्विकार रहने पर वो लज्जित होकर के पैरों के अंदर में जाकर के फूलों का उपहार देने लगी, अपने हृदय को समर्पण करने लगी, और उस समय उनके भाव व्यक्त हो गए। व्यक्त होते ही फिर वो लज्जित होकर के और छिपाने लगी दूसरे श्लोकों से, आकाश के बादलों से। क्या श्लोक है वो, आकाश के बाद धन्याश नद्दस्तदाप द्वार्ज मुकुंद गीत, नद्दस्तदाप द्वार्ज मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव वैकुन बेगा आलिंगन स्थगित उर्म भये मुरारु गृहणन्ति पाद जुगलम कमलोपहार दृष्ट्वा तपे बज पशून सहराम गोपै संचारयंत मनु वेणु मदीरयन प्रेम प्रबिद्ध उदता कुसुमावली भी सक्युर पदार्थ सब उपसाद आद पत्र। देखा अब कहने लगी, आज ये सखाओं के साथ में कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं और उनकी परम बंधु सखा कौन, आकाश के बादल सूर्य को ढक देते हैं और नन्ही नन्ही अपनी अश्रु बुंद रूपी अत्यंत कोमल और सुशीतल जल से कृष्ण के ऊपर में वर्षा बरसाते हैं, आनंद का अश्रु प्रवाहित करते हैं। धन्य ये आकाश के बादल, यदि मर करके हम आकाश के बादल भी हो जाती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। ये कहते कहते ऐसा भाव उमड़ा जैसे उनका भाव सब जो छिपा कर रखा था वो पूर्ण रूप से उघड़ गया। पूर्णा पुलिंद उगाय पदाब जरा ऐसे ये कैसे किस समय के ये सब, कृष्ण भी गोचारण में जा रहे हैं और वो कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण को देख रही हैं सामने और ऐसे समस्त भावों का वर्णन कर रही हैं। कौन गोपियां, यशोदा जी से तुलना करो तो देखो, यशोदा जी में ऐसे प्रेम के ऊंचे भाव सब नहीं देखे जाएंगे, वात्सल्य तक का भाव देखा जाएगा। और इस ये तो मिलन में विरह में है और मिलन में और अद्भुत दशा, मिलन में और अद्भुत दशा, भूल जाती हैं कब, चले चलो वहां नंदगांव और बरसाना के बीच में प्रेम सरोवर पर प्रेम वैचित्र्य अद्भुत दशा, ये किसी में नहीं होगा, किसी किसी में होगा भी स्वकिया नायिकाओं में जैसे द्वारका वाली महिषियों में, तो बहुत थोड़ा सुदीप्त नहीं होगा, उद्दीप्त भी नहीं होगा, धुमायित हो सकता है कुछ, ऐसे सुंदर सुंदर भाव उनके हृदय में। और विरह में तो लीला इत्यादि का भी अनुकरण करती हैं, जब मैं ही कृष्ण हो गई और मूर्छित होकर के गिर पड़ती हैं। उद्धव जी इसको देख करके पागल उठे, यशोदा जी को देखा, उद्धव जी ने नंद बाबा को देखा किंतु इतने विस्मित नहीं हुए, रात भर उनसे बातचीत करते रहे और गोपियों का भाव देखा आप लोगों ने विरह से हमको धन्य बना दिया, हमारा जीवन धन्य उठा, बहुत अनुग्रह आपका हुआ जो विरह में, विरहीण मैं अनुग्रह अनुग्रह कृता अनुग्रह किया आप लोगों ने, क्या जो आपके इन भावों को मैं देख सका, समझ तो नहीं सका किंतु बहुत दूर से देख सका इन भावों, किन भावों को, मधुपकित बंधो मास पिशां ग्रीष शपथ मिगरीव कपेन्द्रम विबुधे लुप्त धर्मा यद अनुचरित लीला करने पीयूष पिब्रठ, इस सब में ये सब पराकाष्ठा है विप्रलंभ की, संभोग लीला की पराकाष्ठा है रस लीला, और ये सब गोपियों में जो देखे गए और नत्र कहीं नहीं देखा, रगानुगा साधक ये सब लक्ष्य करेगा नित्य लीलाओं को भी छोड़ करके, और इसमें यशोदा जी का भाव जिसको अधिकार है, सखा का भाव और उनका भाव, और वही भाव से उसी भाव को लेकर के, वो भाव नहीं माने वही व्यक्ति नहीं, यशोदा नहीं, नंद बाबा नहीं, गोपियां नहीं, राधा ललिता विशाखा नहीं, उनकी अनुगत किंकरी होकर के इन भावों को ग्रहण करने की चेष्टा करेगा रगानुगा भक्त, उधर में ध्यान ही नहीं जाएगा और सब लीला, वैदिक भक्ति वालों का लोगों को जाएगा, जब पुतना को भी उत्तम गति दे दिया बस यही, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, उनको शिशुपाल को मारा और उसकी ज्योति उनके चरणों में विलीन हो गई, ये तो आश्चर्य की बात, अगासुर को मारा जब तक कृष्ण उसके पेट में थे तब तक नहीं, वो आकाश में मंडराती रही उसकी ज्योति, और जब ही कृष्ण उसके फाड़ करके निकल आए और तब ही वो ज्योति मंडराती हुई उनके चरणों में सुनी, देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अघासुर जैसे घृणित प्राणी को, हिंसा प्रिय प्राणी को इन्होंने सारूप मुक्ति इत्यादि दे दी, उसने तो कोई साधन नहीं किया, कैसे दे दी, अरे पुतना की संबंध से केवल दे दिया, पुतना की का भाई है ये, उसको इसको ऐसी गति दे दी, ऐसे दयाल ये वैदिक भक्तों का लक्ष्य वहां तक जाएगा, और रगानुगा का जाएगा उधर में नहीं जाएगा, उन लोगों के भावों की तरफ में, विशेष करके इन भावों में जो रूपानुग होंगे, इन भावों की तरफ गोपियों का जो भाव मैंने बतलाया, तो इन लीलाओं को देख करके विविध प्रकार के भक्तों की विविध प्रकार की ये सब उद्दीपनाएं होती हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें चलें, जो बड़ी भक्त हैं जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, उद्देश्य तो ये है जो कृष्ण का हम भजन करके कृष्ण की सेवा प्राप्त करेंगे, ये भी जानते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, जीवे स्वरूप है, ये शास्त्र में पढ़े हैं या सुने हैं, अनुभूति इत्यादि कुछ नहीं है, अनुभूति नहीं है, अभी मध्यम अधिकार में नहीं आए हैं, ठीक ठीक विचार करने की भी क्षमता भी नहीं आई है, इन लोगों में अनर्थ बहुत से रहते हैं, इसी के लिए बतलाया वो अनर्थ में, देखें वो क्या है, क्योंकि लोगों के लिए पहले छह वेग है, रागानुगा भक्तों के लिए नहीं लिखा गया, क्यों, उनका कहां से आरंभ हुआ, रुचि से, इसलिए ये सब अपराध ये सब नहीं, ये तो उनके लिए है जो कि पूर्व सुकृति से वैष्णव का संग हुआ, और वैष्णव के संग होने पर द्वितीय बार संग होने के बाद में गुरु पदाश्रय हुआ, और अविद्वत प्रतीति रूपी दीक्षा हुई इन लोगों, अनुष्ठानिक इनकी दीक्षा हुई, अनुष्ठानिक की दीक्षा का भी महत्व है, ऐसा नहीं कि महत्वहीन है, किंतु उसकी तुलना में नहीं है, ये बात ठीक है इसका भी, तो उन लोगों में अभी अनर्थ है, इसलिए साधु संघ गुरु पदाश्रय, और गुरु पदाश्रय के बाद में विश्वम्भरेण गुरु सेवा, विषम रूप में गुरु सेवा करने लगे। इसका मतलब है जो उनके आदेश इत्यादि को पालन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। विषम्भ, विषम्भ माने क्या? विगत संभ, संभ माने क्या? उनके प्रति संभ्रम भाव, अपना मान करके मेरे मेरे हैं, लौकिक शब्द बंधुवत गुरु को माने। किंतु भाई उसमें अभी उस अधिकार में उनके प्रति संभ्रम बुद्धि रहेगी ही, किंतु तो भी थोड़ा सा लौकिक सद्बंधुवत भाव रह करके सेवा होगी। जैसे गोविंद जी महाप्रभु जी की सेवा करते थे, ईश्वरपुरी पाद जी की सेवा करते थे, ईश्वरपुरी पाद गोविंद की ईश्वरपुरी पाद की सेवा और ईश्वरपुरी पाद की माधवेंद्रपुरी की सेवा में बहुत अंतर होगा, है? आ रहा है समझ में? व्हाट आई टोल्ड इधर आता है। अच्छा हाँ, क्या बतला रहा था? ईश्वरपुरी के पाद के गुरु भ्राता रामचंद्रपुरी, वो भी सेवा करता था। गुरु जी आप क्यों रो रहे हैं? सन्यासी होकर के सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करने वाले आप रोते हैं ने? आपको धैर्य धारण करना चाहिए। और ईश्वरपुरी प्याद क्या कर रहे हैं? उनकी टट्टी से आरंभ कर सब कुछ साफ कर रहे हैं और उनकी अंतरंग मनोभीष्ट सेवा कर रहे हैं। उनको दीपना जल होने वाला वे सब श्लोकों को क्या श्लोक पाठ कर रहे हैं? ऐ दीन दयाद्रणा हे मथुरा नाथ कदा वलोक्य से हृदयम तदा आलोक कातरम दैत भ्रामति केम करम्य हम। इसके श्लोक ऐसे परलल श्लोक पर श्लोक करते हैं और उनके आंखों से आंसू झर रहे हैं। रामचंद्र के लिए क्या कहा? निकल जाओ यहां से, तुम्हारा मुख दर्शन नहीं करना चाहिए। और ईश्वरपुरी प्याद के लिए क्या कर रहे? अंतरंग सेवा उनकी बतला रहे। ये सब समझ करके अपने अधिकार के अनुसार में गुरु जी की सेवा लोग करें। यदि किसी का ऐसा गुरु और वैष्णव मिलने का सौभाग्य है तो ये संसार में समझो ये सबसे बड़ा भारी सौभाग्य है। इसलिए दृष्टि स्वभाव जनितरि वपुषश्च दोषई न प्राकृत न, ये नहीं। इसके बाद वाला क्या है? कृष्ण ही के जस वाची मनसाद्रियत दीक्षाश्चेत प्रणत भीष्य भजन तमीशम सुश्रया भजन विज्ञमन अन्यमन निंदाद सब सुन हृदय में क्षति संगलब्धा। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां कुतोपि यदि लभ्यते तत्र मूल्यमपि मे कलम जन्म कोटि सुकीर्ण लभ्यते। ऐसा कोई भक्त मिल जाए तो क्या करो? अपने प्राणों को हथेली में रखकर उनकी चरण की सेवा में लगाओ। कोटि कोटि शिर देने से भी यदि ऐसे वैष्णव की गुरु की सेवा होती है तो सस्ता ही समझो। प्रेम इतना सस्ता नहीं है, इसलिए उसका जो मूल्य है वो भी वैसे ही होगा। अब जो ऐसी सेवा नहीं कर सकेगा, ऐसा गुरु भी मिलना बड़ा भारी कठिन, और ऐसी सेवा भी नहीं करेगा तो वो कैसे मिलेगा? इसलिए भारी बड़े सौभाग्य की बात है ऐसा मिलेगा। तब फिर उसका क्या करेगा? इसके बाद में विषम्भर से जब सेवा करेगा तो गुरु जी उसको क्या करेंगे? अन्य व्यतिरेकाभ्याम वो जो भक्ति के विचार हैं उनको बतलाएंगे। तब वो समझ करके अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम उत्तर उत्तमम भक्ति उत्तमा उत्तमा भक्ति का अनुशीलन करेगा। किंतु है अभी कनिष्ठ अधिकारी या अभी मध्यम अधिकारी के निम्न श्रेणी में, किंतु उत्तम भक्ति का अनुशीलन कर रहा है। उसकी पहली भक्ति जो है उत्तम नहीं होगी जब तक उसमें अन्नाभिलाष ज्ञान कर्म इत्यादि है। वो कब होगा? जब ये छूट जाएगा उत्तम वैष्णव का संग होता जाएगा, क्रमशः रुचि आसक्ति भाव उत्पन्न होंगे, तब उत्तम आभक्ति जाकर के संभव है। इसलिए जो लोग सब समय अन्नत्थों में ही व्यस्त हैं, उसको दूर करने में, और जो व्यक्ति इन सब के अनुशीलन में है, दोनों में संग में कौन सा अच्छा है ये देखकर के, उनको इससे कोई संबंध नहीं। दिन रात बस कृष्ण भक्ति में वो लगे हुए हैं, अनुशीलन में, भावों के अनुशीलन में। इसलिए ऐसे वैष्णवों का संग मिले तो हम लोगों के लिए परम लाभदायी है। उस समय उत्तमा भक्ति का अनुशीलन करते 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 पहले अन्नाभिलाष छूटेगा। अन्नाभिलाष और अन्नाभिलाषिता में हमने बहुत बार बतलाया है ये क्या पार्थक्य है। अन्नाभिलाषिता शून्य कहते हैं किसको और अन्नाभिलाष शून्य किसको कहते हैं, कोई बतलाएगा? रामचंद्र बतला सकते हैं, बतलाओ तो देखें। अन्नाभिलाषिता, अन्नाभिलाषिता शून्य एवं अन्नाभिलाष शून्य पर कंडीशन एंड सेंसेस एंड इफ दैट ही इज वांटिंग एनीथिंग फ्रॉम हिज कृष्णा और एनीवन, देन इट विल बी अन्नाभिलाष, अन्नाभिलाष, अन्नाभिलाष एंड दैट इज शून्य और अभिलाष शून्य। बट वेन एनी वन इज इन नेचुरल कंडीशन, नॉट इन नेचुरल, शी हैज समथिंग सो इट हैज बीन ग्रेंटेड दैट क्या उस कंसेशन, लाइक कंसेशन इट हैज बीन गिवन। अब इसको समझो, जब कोई भक्त साधक साधारण स्टेज में हो, जैसे अभी हम लोग हैं, विचार करने की क्षमता है, कोई विपत्ति विशेष नहीं आई, और उस समय में स्वभाव उसका ठीक है, और उस समय में कहता है हे कृष्ण हमारी विपत्तियां जो आएंगी उसे बचाइए, हमको कुछ पैसे की जरूरत है, हमको ये चीज की जरूरत है, हमारी विवाह करने की बड़ी लालसा है, हमें बच्चे की लालसा है, अपनी प्रतिष्ठा की लालसा है, धन जन न धनम न जनम सुंदरिंग कवितावाद जगदीश कामी, ये सबकी कामना है स्वाभाविक स्टेज में, तब ये क्या होगा? अन्याभिलाषिता है, शून्य, स्वाभाविक रूप में नहीं होना चाहिए। और जब स्वाभाविक रूप में है और ये है, तब तो अन्याभिलाषी है। विशेष परिस्थिति में जब प्राण के संकट हो आए और उस समय में उसका स्वभाव बदल गया और उस समय में एक सेकेंड के लिए हे प्रभु रक्षा कीजिए आ गया, तो ये अन्याभिलाषता शून्य ही कहा जाएगा। इसलिए स्वाभाविक रूप में जैसे हम अभी इस स्थिति में है, ज्ञान है और सब कुछ है, किंतु इस समय में हम कुछ भी डिजायर करते हैं, इच्छा करते हैं, तो भाई ये भक्ति के लिए बाधक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष स्थिति में जैसे अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। वैष्णव लोग जो हो हैं, दे शुड नॉट ट्राई टू डू श्राद्ध, संस्कार एंड ऑल अदर थिंग्स कभी नहीं करो। क्यों? यदि वो भगवान का भजन किया हो कोई वैष्णव, तो नाम के आभास से ही तो उसका उद्धार हो गया है, फिर उसके लिए क्या करने की जरूरत है? इफ ए वैष्णव हैज लेफ्ट हिज बॉडी एंड ही वाज चैंटिंग ऑलवेज कृष्णा, ऑलवेज एंड ऑलवेज, एंड ही वाज हियरिंग ही द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण की कथाओं को सुन रहा था, श्रवणम कीर्तन में श्रवणम इत्यादि करता था, और वो शरीर को त्याग दिया। उसके लिए यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध करता है तो वो अपराध का भागी है, ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध नहीं होना चाहिए। अथवा यदि कोई वैष्णव है, मध्यम अधिकारी या दूसरा, और उसके पूर्वज लोग भजन नहीं करते थे या कोई नहीं भजन करता था, और वो उसका पिता भजन नहीं करता था किंतु मर गया, अब इसको क्या करना चाहिए, इसको भी साधन नहीं करना चाहिए,
लोक संग्रह के लिए
नहीं करना चाहिए। यदि करता है तो वो क्या है, वैष्णव अपराध है। क्यों? यदि वो लौकिक जैसा कि श्राद्ध होता है, भूत प्रेत वाला श्राद्ध करता है, तो वो भक्ति का विरोधी है। यदि करना भी है तो क्या करे, अधिक से अधिक भोग दे करके उनको निवेद दे। मध्यम अधिकार का पिता माता भी कितने सात जन्मों तक का उनका उद्धार हो जाता है, हो जाता है ना। तो फिर इसको विश्वास कहां रहा, विश्वास की कमी, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं रहा। किंतु कोई व्यक्ति वैष्णव रीति से जैसा बतलाया गया है, ठाकुर जी का भोग अर्पण करके उसको अर्पण कर रहा है, किस लिए, उसको उसमें विश्वास नहीं है, किस में, लौकिक श्राद्ध या किसी श्राद्ध में, फिर भी वो लोक संग्रह के लिए दिखलाने के लिए क्या करता है कि भाई और 5-10 कंबल और 9 गमछा और उपवीत ले आओ, चौक पुराओ, मंडप बनाओ, उसमें सोने की झालरें लगे और दिखला करके हजारों आदमी उस श्राद्ध को देखने आते हैं। वाह, ये वैष्णव लोग भी श्राद्ध करना जानते हैं। अरे हम लोग तो इतना अच्छा से हमारे पंडित लोग जानते ही नहीं है, और कहेंगे भाई हमारा भी ऐसा ही हो। इस संग्रह करने के लोग उसके पास में आएंगे, इसलिए वो करता है। तो यहां पर ये भक्ति की हानि नहीं हुई, ये अन्नाभिलाषिता शून्य रहा, इस चीज को समझो, इसलिए ये बतलाया गया। अब अन्नाभिलाषिता शून्य का वो अनुशीलन करने लगता है, किंतु है अभी अनर्थ। तो पहली अवस्था आएगी वो क्या आएगी, अनिष्ठिता भक्ति आएगी, और उसके उत्साहमयी घन तरला दृढ़ विकल्पा तरंग रंगनी नियम क्षमा विषय संग्रह और ये सब आएंगे। आप लोग विचार करके इसको अपने जीवन में अनुशीलन करते हैं, यदि अनुशीलन करेंगे तो भक्ति में उन्नति होगी। ये उत्तमा भक्ति का अनुशीलन है, किंतु अभी निम्नगत है, इसमें अभी ये है अनर्थ, इसलिए इसको सोपाधिक भक्ति अभी कहेंगे, शुद्ध नहीं है। इसी में तामसिक राजसिक इत्यादि बहुत सी भक्तियां बतलाई गई है, जीव गोस्वामी ने यह सब बतलाया गया है, इसलिए अभी शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति कब होगी, संपूर्ण रूप से अन्नाभिलाषिता दूर हो जाएगी, ज्ञान कर्म आदि दूर हो जाएंगे, और संबंध होगा कृष्ण से, संबंध ज्ञान उदित, रुचि उदित हुई, संबंध ज्ञान यानी कृष्ण से हमारे क्या संबंध हैं, और इस संबंध को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करके, और उस समय उसका उद्देश्य ठीक हो जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है, प्रेम प्रयोजन हुआ, किंतु प्रेम में भी कौन सा प्रेम तुम्हारा है, किसके प्रति अभी लोभ है, यह भी स्थिर हो जाएगा। जे हम कृष्ण हैं हमारे उपास, ये बात तो ठीक हुई, किंतु उनके प्रति हमारी कौन सी भावना जो है हमारे जीवन में, हमारा उद्देश्य है, भजन का उद्देश्य है, सखा कृष्ण न पुत्र कृष्ण न कांत कृष्ण, न कांत के बाद भी जो तद्दत इच्छात्मिका भाव वाली जो भक्ति है वो है, कौन सा उद्देश्य। जब ये संबंध स्थिर हो जाएगा, संबंध स्थिर को के अब जो भक्ति करेगा, नाम संकीर्तन साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धाए श्रीमन, और उस समय में ये विचार करेगा भावमयी भावात्मिका भाव संबंधी भावानुकूल अविरुद्ध, ये सब विचार करके भजन करो भाई, तब होगा। अरे से हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस हो गया, बस इतना ही तक। दिन रात हम लोगों को भजन में नहीं लगाते हैं, रसोई घर में लगाते हैं, कपड़े खिंचवाने में लगवाते हैं। अरे भाई ये सुनो ना, करो ना। अभी सुकृति का जोर गई है, अभी पूर्व जन्म के संस्कार तुम्हारे उदित नहीं है, उसको संस्कार कराओ, अभी दिन रात सेवा में लगाओ, सुकृति हो। और जिसके सुकृति होगा इस सब को रुचि होगी सुनने में, वो सब कुछ छोड़ करके वो सब कथाओं के लिए प्राण दे देगा। जहां रुचि आई तहां तो बहुत सा काम अलग हम लोग बन गया काम। इसलिए रुचि तो है नहीं, महाराज जी साथ में नहीं रखते हैं और अपनी सेवा नहीं देते, उनका पैर नहीं दबाने देते हैं, पैर दबाने पर पीछे से दुलत्ती झाड़ते हैं, हम निकट नहीं रखते और ऐसा करते हैं, और हमको उनको तो अच्छा साल सफेद वाला साल दिया और हमको काला सा वाला दे दिया, और उनको ऊन वाला अच्छा सा स्वेटर दिया और हमें बस छोड़ करके चला गया। इसलिए ये सब चीजें होने पर भी ये सब चीजें सुन करके उसको धारण करेंगे, ये भक्ति के विचार हैं। इसके लिए साधु संग है, जिसको इस साधु संग में रुचि हो गई, समझो जैसे उसके निष्ठ उसकी नैष्ठ की भक्ति अब आ गई, उसके अनर्थ अब दूर होने जा रहे हैं, बहुत हद तक दूर हो चुके हैं, अहं ममता भाव ही दूर हो चुका है, साधु संग का महत्व अब समझने लगा, अब वो मध्यम अधिकारी वैष्णव हो गया, अनिश्चिता तक वो कनिष्ठ भक्त है, जहां निष्ठा आई तहां अब वो मध्यम अधिकार में अप्रवेश करने लगा, अब विचार शक्ति उसमें आएगी, या जाएगा। अभी कुछ कुछ है भी दोष, किंतु फिर भी अब धीरे 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 अब उजी आ रही है, तभी वो रुचि हुए। अब रुचि में दो प्रकार की, एक वैधि भक्ति से रुचि आई और एक ऐसी आई लोभमय रुचि। लोभमय रुचि बहुत उन्नत है, वो ले जाएगी ब्रज तक, ब्रज के भक्तों के प्रति लोभ आएगा, उसकी साधना के प्रति लोभ आएगा। अभी तक उपास्य से संबंध नहीं हुआ, अभी अभी लोभ किस विषय में रुचि, अभी भजन के संबंध में रुचि होगी, श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में, पाद सेवन में, अर्चन में, बंधन में, कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन में, महाप्रभु जी के लीला स्थलियों के दर्शन में, यह सब में उसकी रुचि होगी। अभी साध्य में नहीं रुचि आई, ये कब आएगी, जब ये गाढ़ हो जाएगी, तो ये रुचि को बरकरार रखते हुए मैंने क्या, ये भी रहेगी और उसकी निष्ठा भी रहेगी और उसकी श्रद्धा भी रहेगी अपने अपने स्तर पर, और साथ साथ में ये पढ़कर बहुत होकर के भजनीय के प्रति, कृष्ण के प्रति लग जाएगी। ये सब साधन के तरीके हैं भाई, इन साधन में प्रवेश करो तब साधु संग का महिमा समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। कह जाए वो भी टका शेर भाजा, टका शेर खा जाए, अंधेर नगरी चौपट राजा, सब वैष्णव, तुलसी के सब पत्र बराबर होते हैं, सब वैष्णव बराबर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। अरे भाई रूप गोस्वामी भी वैसे ही हैं, और जगदानंद पंडित भी वैसे ही हैं, और श्रीवास पंडित भी वैसे ही हैं, सब तुलसी के पत्र हैं, हम किसको हम छोड़ा मानेंगे या अधिक मानेंगे, सब वैष्णव, जो हरिनाम करते हैं गुरु जी से दीक्षा ले लिया वो सब बराबर, एक कोटि में सभी हैं, बस ऐसा ही विचार। गौर परमानंदे।